यार पल्लवी, आहना ने कुछ उलझन भरे स्वर में उसे पुकारा। उस वक्त दोनों ऑटो में बैठे घर की ओर बढ़ रहे थे। आहना ने पुकारने पर पल्लवी ने तुरंत पलटकर उसे देखा। हाँ मेरी जान, बोल क्या हुआ?
यार अजीब अजीब सा लग रहा है हमें। इतनी घबराहट तो हमें उस दिन भी नहीं हुई थी जिस दिन हम इंटरव्यू के लिए गए थे। अजीब सा डर लग रहा है।
आहना ने अपने दिल का हाल बयां किया और दुपट्टे को अपनी मुट्ठियों में भींचे घबराई हुई सी उसे देखने लगी। पल्लवी ने उसकी हथेली को थाम लिया और बड़े ही प्यार व अपनेपन से बोली, घबराहट का तो समझ आता है, आज तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, पर इसमें इतना घबराने वाली और डरने की तो कोई बात नहीं है। वो बस तुझे देखने ही आ रहे हैं, कोई काला पानी की सजा थोड़ी ना सुनाएंगे तुझे। चंद सवाल करेंगे और फिर चले जाएंगे। आहना कुछ पल परेशान सी उसे देखती रही, फिर खौफ भरी नज़रों से उसे देखते हुए धीमे स्वर में बोली,
हमें शादी का सोचकर ही डर लगने लगता है यार, कहीं हमारे साथ भी।
चुप, कोई अशुभ बात अपनी जुबान पर नहीं लाएगी आज तो। तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा समझी, इसलिए इस डर को अपने मन से निकाल दे। आहना की बात बीच में काटते हुए पल्लवी ने सख्ती से अपनी बात कही। वो आहना की बात पर नाराज थी और उसका गुस्सा उसके शब्दों में झलकने लगा था, पर आहना की चिंता अब भी खत्म नहीं हुई थी।
पर हमें कैसे पता कि कुछ गलत नहीं होगा? तू जानती है हमारे यहाँ दहेज कितना चलता है। लड़का जितना कामयाब होगा उसकी बोली उतनी ही ऊँची लगती है, उतना ही बड़ा मुंह फाड़ते हैं वो, और हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत लालच की जमीन और दहेज की नींव पर नहीं करना चाहते। भैया ने हमें इस बार सख्त हिदायत दी है कि लड़के से ऐसी कोई बात न करें, पर हमारा मन नहीं मानता यार। हम किसी ऐसे शख्स से रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं जिसके लिए हम नहीं हमारे साथ आने वाले दहेज की रकम मायने रखती होगी, जैसे हमसे नहीं हमसे रिश्ता जुड़ने पर मिलने वाले गाड़ी और पैसों में दिलचस्पी हो। हम ऐसे लड़के की कभी दिल से इज्जत नहीं कर सकेंगे, और बिना इज्जत के हर रिश्ता खोखला होता है। हमें ऐसे शख्स से नहीं जुड़ना जो दहेज के लिए हमसे शादी करे।
तेरी बात ठीक है आहना, पर थोड़ा बात तो देना ही पड़ता है। फिर भी अगर तेरा मन नहीं मानता तो तू कर ले बात लड़के से इस बारे में, आगे जो होगा देखा जाएगा, बस तू अपना मन शांत रख। तू इतनी टेंशन मत ले यार, पापा जी है ना, और द्रिशान जी भी तो हैं, वो संभाल लेंगे सब और तेरे लिए अच्छा ही घर ढूंढेंगे, काबिल हाथों में ही तेरा हाथ सौंपेंगे।
हम जानते हैं यार, फिर भी हमें बहुत घबराहट हो रही है।
ये तीसरी बार है, अब तक तो तुझे आदत हो जानी चाहिए थी, पर मैंने तुझे इतना घबराते पहले कभी नहीं देखा। पल्लवी भी अब कुछ परेशान दिखने लगी थी। उसकी बात सुनकर आहना ने उसकी हथेली को कस के थाम लिया और घबराई हुई सी बोली,
इस बार बहुत अजीब सा लग रहा है हमें। ऐसे लग रहा है जैसे डर से हाथ पैर फूलने लगे हैं। जी चाह रहा है कि कहीं भाग जाएं ताकि लड़के से मिलना ही ना पड़े।
क्यों, क्या तुझे लड़का पसंद नहीं? मैंने भी फोटो देखी है, मुझे तो अच्छा ही लगा। शक्ल से ही शांता समझदार लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहली बार लड़के से मिलने वाली है इसलिए इतनी घबराहट हो रही है तुझे?
हमें नहीं पता कुछ भी, बस बहुत घबराहट हो रही है हमें। एक काम करना, तू भी चल हमारे साथ घर, हमें थोड़ी हिम्मत मिलेगी, मॉरल सपोर्ट भी मिल जाएगा।
आहना ने बड़ी ही उम्मीद से उससे साथ चलने को कहा, पर पल्लवी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं।
मैं भी आना चाहती हूँ यार, पर मम्मी ने शादी से पहले मुझे उस घर की चौखट पर कदम रखने से सख्त मना किया है। लोग बातें बनाएंगे जिससे दोनों ही परिवारों की इज्जत पर सवाल उठेंगे। पर छाया भाभी आने वाली है तो चिंता मत कर, हम आंटी से बात कर लेंगे, और वैसे भी तू वहाँ हमारी होने वाली भाभी नहीं बल्कि हमारी बचपन की दोस्त बनकर चलेगी हमारे साथ, और ये हमारा आखिरी फैसला है।
आहना ने कठोर लहजे में अपना फैसला सुनाया और पल्लवी की मम्मी से बात करने लगी। उसकी मस्का लगाने और प्यार से रिक्वेस्ट के आगे आंटी को झुकना पड़ा और उसकी जिद के आगे पल्लवी भी झुक गई। दोनों घर पहुंची तो अंतरा पहले ही घर पहुंच चुकी थी और जयंती जी के साथ ड्राइंग रूम का सेटअप बदलवा रही थी। ड्राइंग रूम को आगंतुकों के स्वागत के लिए सजाया जा रहा था। कामवाली बाई साफ सफाई में लगी थी, जयंती जी उससे एक एक चीज साफ करवा रही थी। सारा हाल चमक रहा था, कहीं धूल का एक कण भी नहीं नजर आ रहा था। ड्राइंग रूम में नया चमकदार कारपेट बिछा दिया गया था, सोफे कवर बदल दिए गए थे, टेबल पर जयंती जी ने खुद से बनाया खूबसूरत सा टेबल क्लॉथ बिछाया हुआ था। ड्राइंग रूम में सोफे के साथ आगंतुकों के बैठने के लिए दीवान भी लगाए गए थे, घर के पर्दे भी बदल दिए गए थे। किचन से आती भीनी भीनी खुशबू से हवा महक रही थी, मतलब साफ था कि वहां भी आगंतुकों के स्वागत की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। जयंती जी कभी इधर दौड़ती तो कभी उधर भागकर काम ठीक करवाती। द्रिशान भी आज ऑफ डे में आ गया था और इस वक्त जितेंद्र जी के साथ मार्केट गया था कुछ सामान लाने। आज घर का हुलिया ही बदला हुआ था, आज की तैयारियां कुछ खास थीं, और आहना को तो एक पल को लगा जैसे वो किसी और के घर में आ गई है। वो अभी हैरत से नजरें घुमा घुमाकर अपने घर को देख ही रही थी कि निशांत उसे देखकर दौड़ते हुए उसके पास चलाया और बड़ी ही उत्सुकता से बोला,
जी जी देखिए मम्मी ने तो आज हमारे घर का कायाकल्प कर दिया,
ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली की तैयारी चल रही है और जितनी हड़बड़ी में मम्मी सब काम खुद से देख रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे लड़के वाले नहीं खुद राष्ट्रपति हमारे घर पधारने वाले हैं। निशांत की आवाज़ दीवान उठाकर दूसरी तरफ रखती अंतरा के कानों में पड़ी तो उसने चौंकते हुए आवाज़ की दिशा में नजरें घुमाई। जैसे ही उसकी नज़र गेट के पास खड़ी आहना पर पड़ी, उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए मानो कोई उसे खूब प्रताड़ित कर रहा हो और अब उसे अपना रक्षक नजर आ गया था जो उसे इन सबसे बचा सकता था। अंतरा बिना एक पल गंवाए अपनी जान उस मुसीबत से छुड़ाकर आहना के पास पहुंच गई। जीजी, अच्छा हुआ आप आ गईं। देखिए मम्मी पिछले एक घंटे से मुझसे कभी दीवान हटवाती है तो कभी सोफा उठवाती है। माना मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे खली समझकर वेटलिफ्टिंग करवाई जाए। अंतरा ने जयंती जी की शिकायत आहना से लगाते हुए अपनी दुख भरी दास्ताओं से सुनाई, इस उम्मीद से कि वो उसको और टॉर्चर होने से बचा लेगी। आहना ने उसकी बात सुनी। इतने में जयंती जी उसके पास चली आईं। अनु बेटा, अच्छा हुआ आप आ गईं। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। हम तो आ गए माँ, पर ये क्या कर रही है? अंतरा से दीवान और सोफा क्यों उठवा रही है? कुछ नहीं कर रहे, बस बैठने का इंतजाम देख रहे हैं। जयंती जी का जवाब सुनकर सबसे पहले आहना ने उनके कंधों को थामते हुए उन्हें बिठाया। सबसे पहले तो आप बैठिए। निशांत, पानी लाओ मम्मी के लिए। निशांत उसके कहने पर तुरंत उड़ता हुआ रसोई में पहुंचा और पानी लेकर दौड़ता हुआ वापस आया। ये लीजिए, पानी पीजिए और चैन की सांस लीजिए, सब बिल्कुल ठीक है। और बस लड़के वाले ही तो देखने आ रहे हैं, आप इतने रेस्टलेस क्यों हैं? आहना ने उन्हें पानी पिलाया, पर एक घूंट पानी पीकर उन्होंने ग्लास साइड में रख दिया और चिंतित स्वर में बोली, लड़के वाले आ रहे हैं बेटा, आपके मामा ने कहा है बड़ा अच्छा रिश्ता है, अगर आपकी बात यहाँ पक्की हो जाती है तो आपका भविष्य बन जाएगा, आपके जीवन की खुशियाँ और भविष्य इस रिश्ते से जुड़ा है, इसलिए हम कहीं कोई कमी नहीं रहने देना चाहते। माँ, हमारे भविष्य में जो लिखा होगा वो होकर ही रहेगा, अगर हमारे नसीब में ये रिश्ता लिखा होगा, महादेव ने इस परिवार से हमारा संबंध जुड़ना तय किया होगा, तो आपकी इतनी चिंता के बगैर भी सब तय हो जाएगा, और अगर नहीं होना होगा तो आप कितना भी कुछ भी क्यों ना करें पर रिश्ता नहीं होगा, इसलिए आप इतनी टेंशन मत लीजिए।
खुद को इतना मत थकाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सब सही है, बस अब आप महादेव पर विश्वास रखिए, जो होगा अच्छा ही होगा। आप सारी चिंता और फिक्र छोड़ दीजिए और कुछ देर आराम कीजिए। आराम का वक्त नहीं है बिटिया, लड़के वाले आते ही होंगे, अभी तो बहुत काम निपटाने हैं। जयंती जी परेशान सी फिर उठने लगी, पर आहना ने उन्हें वापस बिठाते हुए कहा, आप कुछ नहीं करेंगी, हमें बताइए क्या काम है, हम कर देते हैं। आप तो जाकर हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ, थोड़ा आराम भी कर लेना, चेहरे पर कितनी थकान लग रही है आपके, यहाँ के काम हम संभाल लेंगे। हाँ अनु, तो जाकर कुछ देर आराम कर, मैं यहाँ सब काम देख लेती हूँ, और तू चिंता मत कर, माँ को बिल्कुल परेशान नहीं होने दूंगी मैं। पल्लवी के कहने पर आहना ना चाहते हुए भी कमरे में चली गई, पर आराम करने के बजाय परेशान सी यहाँ से वहाँ चहलकदमी करने लगी। नीचे पल्लवी ने जयंती जी को उठने नहीं दिया और अंतरा के साथ मिलकर खुद बचे काम निपटाने लगी। कुछ देर बाद रीशांत लौटा तो पल्लवी को यहाँ देखकर पहले तो चौंक गया, फिर उसे घर के सदस्य जैसे काम संभालते और जयंती जी की परवाह करते देख मुस्कुरा दिया। कुछ देर में आहना के चाचा, बड़े पापा और मामा के साथ साथ पल्लवी के माता पिता भी यहाँ पहुँच गए। लगभग सब तैयारियाँ हो गई थीं, अब इंतज़ार था तो बस लड़के वालों का। यहाँ तो सब ठीक है पापा, पर लड़का भी साथ आ रहा है तो अनु से अकेले मिलवाना भी होगा, तो उसका इंतज़ाम अनु के कमरे में करवाएं या छत पर? दृशांत ने पूरे हाल में नज़र घुमाते हुए जितेंद्र जी से सवाल किया, पर उनके जवाब देने से पहले ही अंतरा तपाक से बोल पड़ी, कमरे में नहीं भैया, वरना मम्मी अभी मुझसे पूरा कमरा साफ करवाएगी, आप छत पर इंतज़ाम करवा दीजिए। छत पर बिठाना ही ठीक रहेगा, खुले वातावरण में एकांत में बात कर लेंगे। छाया भाभी ने भी अंतरा के सुझाव पर सहमति जताई और बाकी सबके मत के बाद लड़का लड़की को छत पर मिलवाने का फैसला किया गया। कमिंग सून।